Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari Om. Hari यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरतम् स्मरामि प्रातस्तम् निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम् ब्रह्म परमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जय मुदीरये शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 परमात्मा की प्राप्ति के लिए चार चरण आगे बढ़ाने हैं। पहला चरण है अपने इस जागृत अवस्था के जो व्यष्टि में है इसको थोड़ा विराट बनाओ, मतलब हर समय बस इतना ही अपने मैं को न माने कि यही मैं शरीर, ये शरीर मेरा, ये घर मेरा। परमात्मा के मैं के साथ यदि एक मिनट के लिए आप अपना मैं जोड़ दें भाव से, तो फिर ये दुनिया किसकी है? सब अपनी तो है। तो यही विराट का भाव है। और एक एक मिनट 24 घंटे में कितनी बार करेंगे? एक बार तो कम से कम हो गए, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है। तो आपका ये संकल्प दृढ़ होता जाएगा कि मैं ये एक मटकोटे वाला शरीर नहीं हूं, शरीर वाला नहीं हूं, मैं तो संपूर्ण सृष्टि में जो व्याप्त चैतन्य है उससे एक हूं। ऐसे मत मानो कि सारी सृष्टि मेरी है, ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन सारी सृष्टि मेरे में ये प्रतीत हो रही है, मैं वो। बोले ये पहला चरण है। अब दूसरा चरण है कि सूक्ष्म सृष्टि माने अपने स्वप्नलोक की दुनिया से बाहर निकले। ये सपना एक तो रात को नींद के कारण आता है, जब आदमी आधा सोता है और आधा जगा हुआ होता है, तब जो भी संस्कार चित्त में चाहे इस जन्म के हों चाहे पहले जन्मों के हों, जो चित्त में भरा हुआ है ना वही सब पर्दे पर दिखने लगता है। आत्मा ही पर्दा है और आत्मा ही प्रकाश है, और ऑपरेटर जीवात्मा भोक्ता जो है ये ऑपरेटर। तो लीला ये चल रही है, सपना चल रहा है ना। हमारी दृष्टि से तो ये जागृत सत्य है और स्वप्न झूठा है, क्योंकि हम जागृत को ही महत्व देते हैं। लेकिन जरा परमात्मा की दृष्टि से देखो, परमात्मा ही प्रकाश है और परमात्मा ही अधिष्ठान होने से पर्दा है, और उस पर जो कुछ भी दिख रहा है माया की रील से ला रहे हैं वही देख रहा है। तो ये दूसरा चरण है। तो कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि जैसे भगवान को ये सृष्टि दिखती है, ऐसे ही आधे क्षण के लिए ही सही हमारी भी उसकी नजर से नजर मिल जाए। परसों महाराष्ट्र की टेप शाम को चलती है ना, वीडियो टेप, तो भक्ति योग चल रहा है उसमें। तो उसमें एक वाक्य उन्होंने बोला था कि तुम्हारी दृष्टि सच्ची कि परमात्मा की दृष्टि सच्ची। जब तक तुम्हें अपनी दृष्टि सच्ची मालूम पड़ती है तब तक अभी तुम्हारी कमी है, तुम साधक अभी ठीक नहीं हो। परमात्मा को जैसी ये सृष्टि दिखती है, अरे थोड़े टाइम के लिए वैसी भी तो देखो ना। वासुदेव सर्वम, ये तो महात्मा बोलता है, स महात्मा से दुर्लभ। और उपनिषद में कहते हैं अहमई वेदम सर्वम, मैं ही ये सब हूं, ये ईश्वरीय दृष्टि है। और ब्रह्म में तो सर्वम सप्पम सप्पा है। ब्रह्म में ये कहने की जरूरत नहीं है कि सब मैं ही हूं, क्योंकि सब ही ब्रह्म रूप हो ही गया, तो कहने की कहे कौन, किसको कहे। केन कम पश्येत केन कम विजानियात यत्र आत्मैवाभूत, ये भी वैदारण्यक की श्रुति है कि जहां आत्मा ही सब कुछ है, अब वहां केन कम पश्येत, किसके द्वारा कौन किसको देखे, सारी त्रिपुटियां समाप्त हो जाती है। तो जीव दृष्टि को हटाने के लिए विराट दृष्टि कभी कभी विचार करना चाहिए, ये पहला कदम है। और भोक्तृत्व दृष्टि को हटाने के लिए, जीव दृष्टि में कर्ता की प्रधानता होती है, जागृत अवस्था में कर्ता की प्रधानता होती है और स्वप्न अवस्था में भोक्ता की प्रधानता होती है। दृश्य भी भोक्ता ही प्रस्तुत करता है और भोग भी उनका वो खुद ही करता है। तो हिरण्यगर्भ के विचार से ये भोक्तृत्व क्षीण होता है और विराट के विचार से कर्तृत्व क्षीण होता है। चलो अब एक अवस्था और रह गई तीसरे चरण की, सुषुप्ति की। कल यही बात छोड़ी थी तो मैंने कल कहा था कि आजकल लोग कहते हैं कि सुषुप्ति होती ही नहीं है, लेकिन उनके कहने से क्या है, सबको अनुभव है। सोते सोते कुछ क्षण तो ऐसा आते ही हैं कि जबकि कुछ पता नहीं रहता है, शरीर न शरीर का, न शरीर के संबंधियों का, न मकान का, न शहर का, कुछ पता नहीं। भले ही चाहे आपको पांच मिनट की सुषुप्ति हो और किसी को आधा घंटे की हो, बहुत ज्यादा लंबी तो किसी की नहीं होती है, ज्यादातर तो स्वप्न लोक ही होता है। लेकिन जितनी देर भी जिसकी होती है सुषुप्ति होती है, सबका ये अनुभव है, तो मनोवैज्ञानिक कुछ भी कहते रहे, वो तो इसको इसलिए बोलते हैं आजकल कि कहीं आत्मा सिद्ध न हो जाए, क्योंकि अगर आत्मा सिद्ध हो गया तो फिर ये सारा वेदांत और सारे हिंदू धर्म जो है ये सब सिद्ध हो जाएगा। मार्क्सवादी हैं, वो आत्मा पर ही कुठाराघात करते रहते हैं, बोले आत्मा ही नहीं है, पुनर्जन्म ही नहीं है, जो कुछ है बस यही है। और मार्क्सवादियों को छोड़ दो, अब जनरल लोगों की भी धारणा यही हो रही है, अरे साहब किसने देखा है स्वर्ग नरक, किसने देखा है पुनर्जन्म, ये सब भयावह डराने के लिए प्रलोभन है। अच्छा महात्मा लोग भी ऐसे बोल देते हैं कि प्रलोभन है भाई, ये स्वर्ग का प्रलोभन है, स्वर्ग वर्ग है नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शून्य में आदमी नहीं सोच सकता, भले ही स्वर्ग है कि नहीं है, माने दिखता है कि नहीं दिखता है, वो तो मरने के बाद दिखेगा, तो मर के देखो पहले तब मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं। तो जीते जी तो वो स्वर्ग दिखने वाला है नहीं, लेकिन जीते जी स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग के सुखों की इच्छा तो होती है, जैसा सुनते हैं कि वहां ऐसा सुख है ऐसा सुख है, वही सब सुख तो हम यहां बनाने की कोशिश करते हैं। अब घरों में भी पार्क बने हुए हैं ना, बड़े बड़े जो घर हैं बंगले हैं, तो वहां क्या है कि वहां नंदन वन है, वहां अप्सराएं गाती फिरती हैं, यहां पर किराए की मिल जाती है। जिन चीजों की वहां इच्छा होती है ऐसा सुनने में आता है, वही सब चीज यहां भी है। तो ये इच्छा कहां से आई अगर कोई चीज है ही नहीं, तो बोले ये सब मुड़ियों ने संसार रचा है, क्या रखा है मेदे में, ये सब आत्माओं की लीला है, ऐसा बोल देते है कुछ नहीं, नहीं ये सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है। वो तो अगर ये दुनिया है तो वो दुनिया भी है, पहले इसको नकारो तब उसको नकारो, तब तो वो सनातन धर्म है, और उसको नकार दिया और इसमें फंस गए नारायण, तो ये सनातन धर्म नहीं है, ये तो अधर्म की ओर चलने का रास्ता है। तो सुषुप्ति है, धोखे में नहीं आना चाहिए। अब सुषुप्ति क्या किसको कहते हैं, पहले उपनिषद इसी को क्लियर करती है, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। उपनिषद ने न तो पहले जागृत अवस्था की परिभाषा दी न स्वप्न अवस्था की परिभाषा दी, लेकिन सुषुप्ति अवस्था की परिभाषा दी। क्यों? क्योंकि ये तो जागृत और स्वप्न का तो हम सबको अनुभव है, और जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो कॉन्शियसनेस बेहोशी हो जाती है, तो है वहां कुछ के नहीं है इसमें संदेह बना रहता है। लेकिन जब सुषुप्ति ये उपनिषद ने ये बात परिभाषा कर दी, तो अब ये बात पक्की हो गई कि सुषुप्ति अवस्था भी है, और वो कैसी है कि यत्र सुप्तः, यत्र माने जिसमें, जहां, तो जिसमें माने जिस काल में, और जहां माने कौन सोएगा, हम ही सोएंगे ना, तो हम ही सुषुप्ति में जाएंगे, इस समय हम जागृत में हैं, तो हमारी सिद्धि सुषुप्ति में तो कर ही दी उपनिषद ने, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर के लिए हम गायब हो जाते हो वहां, अरे फिर कोई सोएगा ही नहीं अगर ये पता चल जाए ना कि सुषुप्ति में हम लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं, फिर कोई सोएगा नहीं नारायण, पता नहीं लौट के आवे या ना आवे। और सुषुप्ति और मृत्यु में फर्क तो सिर्फ इतना ही है ना कि सुषुप्ति से लौट आते हैं और मृत्यु से वो जागृत का अहम जो है लौटता नहीं है, बाकी बेहोशी की स्थिति तो सब वही है। तो यत्र सुप्तो, जिसमें मैं सो करके न कंचन कामं कामयते, कुछ भी किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। तो जागृत अवस्था गई और न कंचन स्वप्नम पश्यति, और न कोई सपना ही देखता हूं। तो जागृत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं से विलक्षण एक अवस्था में हम चले जाते हैं, उसको ही सुषुप्ति बोलते हैं। अब आपको और कुछ नाम रखना हो तो और नाम रख लो, कोई शास्त्रीय नाम तो उसका सुषुप्ति ही है। आजकल ऐसे बोलते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जब इन शब्दों को सुनते हैं ना, बोले देखो असली तो वेदांत ये है। अरे भाई, इन्हीं को उन्होंने अंग्रेजी में बोल दिया और क्या किया। कॉन्शियस जागृत हो गई, सब कॉन्शियस स्वप्न हो गया, और जहां पर के कुछ पता नहीं चलता है वो अनकॉन्शियस हो गया। तो कोई बात अंग्रेजी में सुनने से ही महान हो जाती है क्या? तो जिसमें सोया हुआ मनुष्य न तो जागृत का कोई व्यवहार करता है और न स्वप्न के अनुसार कामना करता है, ऐसी जो स्थिति है। अब पश्यति माने ज्ञानात्मा तो वहां मौजूद है, लेकिन जागृत जैसा कुछ अनुभव नहीं होता और स्वप्न जैसा भी कुछ अनुभव नहीं होता। स्थूल शरीर भी काम नहीं करता और सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं करता। स्थूल शरीर काम नहीं करता इसलिए कर्म नहीं होते, और सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता इसलिए वासनाएं नहीं होती। बस पड़े। लेकिन क्या वो कृतकृत्यता की स्थिति है? क्या उस सुषुप्ति से उठने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि हम कृतकृत्य हो गए, कर्म छूट गया, हमारी सब वासनाएं छूट गईं, तो बस अब तो हम ब्रह्म हो गए नारायण? तो हमारे गणित में एक होता है नेसेसरी कंडीशन, एक होती है सफिशिएंट कंडीशन। तो ये कर्म त्याग, ये नेसेसरी कंडीशन भले ही हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। आप चाहे जितना कर्म छोड़ के बैठ जाओ, आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और बोले वासनाएं उदय ही ना हो, समाधि में ही बैठे रहो, तो अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ये सब नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन अगर माना भी जाए तो नेसेसरी तो हो सकती है, आवश्यक तो हो सकती है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इनसे ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो उपनिषद विद्या चाहिए और किसी गुरु के द्वारा उसको ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि सब बात किताब में नहीं लिखी होती है। उसका लक्षार्थ तो गुरु ही बताता है कि इस शब्द की मार जो है वो कहां पर है। तो ये सुषुप्ति की परिभाषा हो गई। बोले अच्छा चलो विचार करते हैं सुषुप्ति का। सुषुप्ति स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमयो हि आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः। वही जैसे साथ साथ हिस्से करके जागृत और स्वप्न का विचार किया, ऐसे ही सुषुप्ति का भी साथ साथ हिस्सों का विचार करके करते। तो बोले ये आत्मा जीवात्मा जो है ये सुषुप्त स्थान वाला है। सुबह उठकर क्या कहता है, मैं तो सो गया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहा। अरे भाई तुम वदतो व्याघात बोल रहे हो, अगर पता ही नहीं रहा तो मैं सो गया था, ये कैसे तुम्हें मालूम है। बोले मेरे मुंह में जीभ नहीं है तो बोल कैसे रहे हो, इसको वदतो व्याघात बोलते हैं। बोल भी रहे हो और उसको निषेध भी कर रहे हो कि मेरे मुंह में तो जीभ नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं रहा। अरे तो ये तो पता रहा ना, जागृत और स्वप्न का कुछ पता नहीं रहा, ये तो उसकी सुषुप्ति की परिभाषा में ही बोल दिया, लेकिन वहां कोई कॉन्शियसनेस रही ही नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहा। सुषुप्त स्थान है, मैं सो गया, ये अभिमान जगतने पर होता है। सुषुप्त स्थान, मैं इतनी देर समाधि में रहा, समाधि के अभ्यास करने वाले लोग क्या करते हैं, घड़ी में या मोबाइल में अपना वो टाइम लगा देते, मान लो आधा घंटे पौना घंटे घंटे भर जो कुछ भी। अब वो तो उनके कान तो उस पर लगे रहते हैं कि कब ये मोबाइल बोले और कब हम आसन खोल आ रहे हैं, तो वो कोई समाधि समाधि थोड़ी लगती है, वो तो उसी में समाधि रहती है टाइम में। महाराष्ट्र जी तो कहते हैं कि अगर भजन करने बैठना है, समाधि लगानी है, तो ये सोच के बैठो कि अब दुनिया हमारे लिए खत्म, अब अगर हम नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। एक आदमी अगर दुनिया से चला भी गया तो क्या दुनिया खाली हो जाएगी? तो सुषुप्त स्थान अर्थात मैं सुषुप्त हो गया था, ऐसा अभिमान वो करता है। एकी भूता, अब वहां का अनुभव बता रहे हैं क्या हो गया था। तो अनुभव सुषुप्ति में तो होता नहीं है कुछ भी, वहां तो ऐसा समझो जैसे काला कम्बल ओढ़ लो तो आपके शरीर का कोई हिस्सा दिखता नहीं है। तो एक काला कम्बल ओढ़ निद्रा, घोर निद्रा, तो निद्रा को काला ही रंग का माना गया है ना। तो एक ही भूता का अर्थ शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे मान लो दिन में तो सब चीजें दिखाई दे रही हैं, अब आ गई रात, अमावस्या की रात, और उसमें भी बादल आ गए, अब न तारों का प्रकाश है न सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, तो जो चीजें अलग अलग सब दिख रही थी उनका क्या हुआ, दिखना बंद हो गया। तो सब के सब एक भूत हो गए, एक ही भूत हो गए, उस अंधेरे ने सबको एकम एक कर दिया, सारे डिफरेंसेस भेद जो है वो समाप्त हो जाते। एक माने जो अनेक में व्याप्त हो, एति इति एका, ऐसा व्याकरण से इसकी व्युत्पत्ति करते हैं कि जो दूसरों में एति माने चला जाए, जैसे एक और एक होगा तब दो बनेगा ना, एक और एक और एक फिर बनेगा तब तीन बनेगा, तो वो एक ही के तो अलग अलग नाम चलते चले जा रहे हैं, तो एक किसको कहते हैं कि जो अनेक में उपस्थित होता है, व्याप्त होता है। अब मान लो हजार में आपकी गिनती पहुंच गई, तो फिर उसमें एक की तरफ आओगे तो क्या करना पड़ेगा? बोले 999, 998, ऐसे करते करते वापसी चलो, तब एक पे आओगे ना। तो बोले नहीं, एक साथ भी हो सकता है। कैसे कि घना अंधकार छा जाए, हाथ को हाथ सूझे नहीं, तो सब एकदम लुप्त हो जाए। ऐसे ही जहां नींद आई तो जागृत स्वप्न के सारे भेद जो है वो एक रूप हो जाते हैं। क्या रूप है उनका? अंधेरा। माइंड में तो ये लर्किंग रहती है कि नहीं, यहां फलाना आदमी बैठा था, अब नहीं दिख रहा है। लेकिन अब तो कुछ भी तो नहीं दिख रहा है ना, वही थोड़े नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसी को एक ही भूता बोलते हैं। सुषुप्त स्थान एकी भूत प्रज्ञान घन, ये इसको समझना बहुत आवश्यक है। एक तो है ज्ञान, एक है प्रज्ञान। तो जैसे सूर्य है, तो सूर्य का स्वरूप क्या है? प्रकाश। लेकिन प्रकाश की जो किरणें हैं उससे उसकी व्याप्ति होती है। अगर उसमें से किरणों को रोक दिया जाए किसी तरह से, तो उसकी व्याप्ति नहीं होगी प्रकाश की। तो ये आत्मा जो है, ये तो सूर्य की तरह से ज्ञान स्वरूप है। ये माया महारानी ये करती हैं कि इनकी किरणों को फैला देती हैं। इनकी माया को गाली देने की जरूरत नहीं है, ये वैभव है आत्मा का, इसको वैभव बोलते हैं। तो ये उसके प्रकाश को फैला देती है। कितनी किरणें फैल रही हैं? तो सबसे पहले एक किरण चली, उसका नाम हो गया अहंकार। फिर दूसरी अहंकार से आगे चली, उसका नाम हो गया बुद्धि। फिर और आगे चली, मन।